अर्पिता ने समर्थ को इस तरह हैरान होते देखकर धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या बात है समर्थ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम जानते हैं हम पर ये इस तरह के कपड़े सूट नहीं करते। और अर्पिता बोल ही रही थी कि समर्थ उसके करीब आया और उसने अर्पिता के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप इन कपड़ों में इतनी ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके गालों पर किस किया। अर्पिता उसे इस तरह किस करते देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। समर्थ ने अपने दोनों हाथ अर्पिता की कमर में डाले और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। समर्थ अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर ही देखे जा रहा था। अर्पिता समर्थ की आंखों में नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसे समर्थ की आंखों में अपने लिए प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था और वो समर्थ के हाथों को अपने कमर पर फील करके काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। तभी समर्थ ने अर्पिता के होठों के करीब जाकर उसके होठों को किस करने की कोशिश की। जैसे ही वो उसके होठों के बिल्कुल नज़दीक गया, उसने समर्थ के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, समर्थ, वो हमें भूख लगी है। अर्पिता ने इतना बोलकर समर्थ को रोक दिया। समर्थ उसकी बात सुनते ही तुरंत एक कदम पीछे हटा और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे हाँ, हमने वैसे भी खाना लगा लिया है, बैठिए। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता को वहीं डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अर्पिता चुपचाप खाना खाने लगी। अर्पिता थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग रही थी। समर्थ ने अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए अर्पिता, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। इतना बोलकर समर्थ बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराई और वो भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। वहीं राजमहल में काफ़ी कुछ बदला हुआ था। अभिमन्यु काफ़ी टेंशन में लग रहा था और वहीं मासा चुपचाप अपने कमरे में थी। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। इप्सिता ने अभिमन्यु के बगल में आकर बैठते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको अब मासा से बात करनी चाहिए, उन्होंने अर्पिता के जाने के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। आई थिंक आपको मासा से जाकर एक बार बात करनी चाहिए। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं इप्सिता, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, हम दोनों साथ में मासा से बात करने चलेंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन अभिमन्यु हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारा मासा के सामने जाना ठीक नहीं होगा, आप अकेले में अगर उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, आप हमारी धर्मपत्नी हैं और आप हमारे साथ ज़रूर चलेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वो लोग सीधे मासा से मिलने उनके रूम में गए। तभी अभिमन्यु ने घर के एक नौकर से मासा के रूम में खाना लाने के लिए कहा। जैसे ही अभिमन्यु और इप्सिता मासा के रूम के बाहर पहुँचे, वैसे ही वो नौकर भी खाना लेकर वहाँ पर पहुँच गया। अभिमन्यु ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने देखा मासा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, मासा अभिमन्यु के साथ इप्सिता को देखकर बोली, क्या बात है, आप लोग यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु मासा के पास आकर बोला, हम आपसे बात करने आए हैं मासा। अभिमन्यु ने जैसे ही बात कही, मासा की नज़र सीधे इप्सिता पर गई और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अभिमन्यु ने मासा के पास आकर कहा, मासा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उन्होंने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने खाना खा लिया था, अब हमें बस आराम करना है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जैसे ही मासा ने ये बात कही, अभिमन्यु उनके पास आते हुए बोला, मासा, हम जानते हैं आप अर्पिता के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं और हमने जो फैसला लिया शायद वो भी आपको पसंद नहीं आया। मासा अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु, हमने आपसे कुछ कहा, आपने सुना नहीं? हमें इस टाइम किसी से किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, फिर वो चाहे अर्पिता के बारे में बात हो या इप्सिता के बारे में, प्लीज़ हमारे रूम से चले जाइए और हमें रेस्ट करने दीजिए। इतना बोलकर मासा तुरंत अपने बेड पर आकर बैठी और उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ से अपनी नज़रें फेर लीं। अभिमन्यु के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और सीधे मासा के कमरे से बाहर आ गया। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, हमने कहा था आपसे इप्सिता, मासा इस टाइम हमसे बात नहीं करने वाली हैं, बट आप हैं कि हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी। अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से सॉरी सुना तो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं, वैसे भी हम जानते हैं आपके इंटेंशन सच्चे थे, खैर कोई बात नहीं, जाइए आप चेंज करिए, हम खाना यहीं रूम में मंगा लेते हैं। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चेंज करने के लिए चली गई। अभिमन्यु ने खाना कमरे में ही मंगा लिया। खाना खाने के बाद इप्सिता, जो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, वो बेड पर लेटते ही सो गई, लेकिन अभिमन्यु को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने फोन साइड में रखा और इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ समर्थ और अर्पिता अपार्टमेंट में थे। जैसे ही उन लोगों ने डिनर फिनिश किया, अर्पिता समर्थ की तरफ देखने लगी। उसने समर्थ की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहा, पर वो बोल नहीं पाई। समर्थ ने जैसे ही उसकी बात नोटिस की, उसने अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता क्या बात है, आप हमको हमसे कुछ कहना है क्या? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी समर्थ अर्पिता के बिल्कुल करीब आया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप हमसे कुछ भी कहने में इतना क्यों हिचकिचाती हैं अर्पिता? हम आपसे प्यार करते हैं और अब तो हमने आपको अपनी धर्मपत्नी भी बना लिया है, तो अभी भी अगर आप इस तरह से हमसे बातें करेंगी तो कैसे चलेगा? अर्पिता ने समर्थ की ये बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, नहीं समर्थ, हम हिचकिचा नहीं रहे। हम सोच रहे थे कि आज काफी कुछ हुआ है तो हमारा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो क्या हम अभी सो सकते हैं? समर्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम जानते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा था, बिल्कुल आप सो सकती हैं, चलिए रूम में चलते हैं। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे बेडरूम में आया। उसने बेड पर अर्पिता को लिटाया और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, आपके सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी समर्थ उठा और उसने ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसमें से सिर दर्द का बाम निकाला और उसे लेकर वापस अर्पिता के पास आया और बड़े प्यार से उसके सिर पर लगाने लगा। तभी अर्पिता अपने मन में बोली, जब हम जयराज के साथ थे और हमने उनसे कहा था कि हमारा सिर दुख रहा है, तो उन्होंने हमें कितनी बातें सुनाई थी और ऊपर से ये भी बोला था कि सिर दर्द वाली नौटंकी हम उनके सामने ना दिखाएं। और एक समर्थ है जो हमारे सिर दर्द को कम करने के लिए खुद अपने हाथों से बाम लगा रहे हैं। अर्पिता इतना बोलते हुए समर्थ के चेहरे की तरफ ही देखी जा रही थी। तभी समर्थ ने अर्पिता के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए अर्पिता, वरना बाम की वजह से आपको आंसू आ जाएंगे।